आस्तिक आस्तिक लाइब्रेरी के सोफे पर बैठा था, हाथ में वाइन की बोतल। उसने बोतल सीधे मुंह से लगाकर वाइन खत्म की। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं। चेहरा इतना सख्त था कि उस वक्त कोई उसके सामने होता तो शायद वो उसे जान से मार देता। उसे अपने गुस्से की आग में पागल होने की परवाह नहीं थी। अगर अरुणिमा यहां होती तो बेचारी की खैर नहीं थी, पुष्कर जी की तो उसे परवाह ही नहीं थी। वो शख्स जिसके बारे में वो सोच रहा था उसके अपने पिता थे। आस्तिक की बोतल लगभग आधी खाली हो चुकी थी और वो गुस्से में अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। किस तरह से पुष्कर रायचंद उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पर इसकी शुरुआत आज नहीं बल्कि 7 साल पहले हुई थी, जब आस्तिक भारत से अमेरिका पढ़ने गया था। जब पुष्कर जी को पता चला कि चेतन नपुंसक था और वो आगे चलकर न तो रायचंद खानदान को वारिस दे सकता था और न ही किसी लड़की के साथ रिश्ता बना सकता था, तब उन्हें माफिया की कुर्सी देना बेवकूफी लगने लगा। इसलिए पुष्कर जी का सारा ध्यान आस्तिक पर चला गया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद पुष्कर जी ने आस्तिक को अमेरिका के माफिया अंडरवर्ल्ड के स्कूल में भेज दिया, जहां माफिया की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाया गया और वो ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। कॉलेज में पढ़ाई और माफिया की ट्रेनिंग के दौरान आस्तिक की मुलाकात अमायरा मलिक से हुई। अमायरा भारतीय थी और अमेरिका में पढ़ने आई थी, लेकिन आस्तिक से मुलाकात के बाद दोनों ने अपनी असल पढ़ाई छोड़कर किसी और पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया। जवानी में किसी की तरफ आकर्षित होना आम बात है और शायद आस्तिक और अमायरा भी इसी आकर्षण के शिकार हो गए। दोनों एक दूसरे को शारीरिक रूप से संतुष्ट करते थे। आस्तिक को अमायरा के साथ खुद को पूरा महसूस होता था, इसीलिए वो धीरे धीरे अमायरा की तरफ और ज्यादा खिंचने लगा। इतना कि जब उनकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी तो दोनों को एक दूसरे के साथ की परवाह होने लगी। 4 साल के रिश्ते के दौरान आस्तिक ने माफिया की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की। बाकी माफिया सदस्यों में आस्तिक का सबसे अच्छा रैंक था। पढ़ाई में भी आस्तिक हमेशा नंबर 1 था। इसके अलावा उसने अमायरा के साथ अपने रिश्ते को भी बहुत अच्छे से बनाए रखा। आस्तिक अमायरा से अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो उसे भारत ले आया। वो उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहता था और उनसे शादी की बात करना चाहता था। पर जिस दिन आस्तिक अमायरा को परिवार से मिलवाने वाला था, पुष्कर रायचंद ने अमायरा और आस्तिक के रिश्ते को सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमायरा जैसी लड़की उनके घर की बहू नहीं बन सकती। आस्तिक ने बगावत कर दी। अगर नेहा जी का सहारा नहीं होता तो शायद आस्तिक की बगावत वहीं खत्म हो जाती, लेकिन अमायरा के लिए जो जुनून आस्तिक के अंदर था उसने आस्तिक और पुष्कर जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। पुष्कर जी ने साफ कह दिया कि अगर आस्तिक की शादी होगी तो किसी ऐसी लड़की से होगी जिसका परिवार माफिया से जुड़ा हो, क्योंकि आगे चलकर वो लड़की माफिया लेडी बॉस बनेगी। कोई ऐसी लड़की जो माफिया से संबंधित नहीं है इस पद को संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने आस्तिक को सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अमायरा के साथ जाना है तो जाओ, पर तुम्हें न प्रॉपर्टी मिलेगी न माफिया की कुर्सी और न ही ये साम्राज्य। ये सब मैं चेतन को दे दूंगा और माफिया की गद्दी छोड़ दूंगा। उसके बाद इस पद को कौन अपनाएगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आस्तिक ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसे सब कुछ चाहिए था, ये साम्राज्य, दौलत, शोहरत, ये पद और साथ ही अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह। वो सब कुछ इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इन सबके बावजूद वो अमायरा को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी माँ के कहने पर आस्तिक ने उस दिन खुद को इतना दूर कर लिया था कि उसका बस एक ही मकसद बनकर रह गया था, माफिया में अपनी जगह बनाना। इसके लिए उसने अमायरा से अपने रिश्ते खत्म कर दिए। अमायरा उसके रास्ते से दूर हो गई और आस्तिक ने 1 साल के लिए अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाला। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आना था, जब पुष्कर जी ने आस्तिक और अरुणिमा की शादी तय कर दी। आस्तिक की शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि इन 1 सालों में भी वो अमायरा को भुला नहीं पाया था, लेकिन पुष्कर जी का फैसला अभी भी वही था, आस्तिक को शादी करनी ही होगी, और अगर उसकी शादी होगी तो अरुणिमा से, क्योंकि अरुणिमा का परिवार पहले से ही माफिया से जुड़ा हुआ है। आस्तिक गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपना घर अलग कर लिया। इससे ज्यादा वो खुद को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अचानक एक पार्टी में उसकी मुलाकात अमायरा से हो जाती है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अमायरा की शादी हो चुकी है और उसका पति उम्र में बहुत बड़ा है, इतना कि वो उसका बाप लगता है। अमायरा और आस्तिक के दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे और उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे को मोहब्बत में कैद कर लिया। अमायरा के पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और इसी बीच आस्तिक और अमायरा एक प्राइवेट अपार्टमेंट में साथ रहने लगे। आस्तिक की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना अरुणिमा की तरफ से इस रिश्ते को इनकार करवा दिया जाए। जब उसने अरुणिमा के बारे में पता किया तो जो सच उसके सामने आया उसे सुनकर वो चौंक गया। उसने ये सारी बातें नेहा जी को बताई। नेहा जी के दिमाग में तब एक और शैतानी प्लान आया। उन्होंने आस्तिक को अपने अगले प्लान में शामिल किया। उन्होंने आस्तिक को समझाया कि 1 साल के लिए अरुणिमा से शादी कर लो और फिर उसे तलाक दे दो, क्योंकि अरुणिमा पहले से ही किसी देव नाम के लड़के से प्यार करती है। अपने परिवार के दबाव में आकर उसने देव को छोड़ दिया था। वो आस्तिक से शादी सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि पुष्कर जी ने अरुणिमा की डूबती कंपनी को बचाया था। अरुणिमा अपने पिता के एहसान का बदला चुका रही है। नेहा जी ने आस्तिक से कहा, एक साल के लिए अरुणिमा से शादी करो और उसके बाद उसे तलाक दे दो, क्योंकि एक साल बाद पुष्कर रिटायर हो जाएंगे और माफिया की गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। इसी शर्त पर आस्तिक ने अरुणिमा से शादी की, लेकिन शादी से पहले उसने अमायरा से वादा किया था कि वो हमेशा उसी का रहेगा। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले उसने अपनी कलाई पर अमायरा के नाम का पहला अक्षर लिखवाया था। ये एक वादा था कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा और एक दिन दोनों साथ होंगे। शादी के तुरंत बाद आस्तिक ने अरुणिमा को साफ बता दिया था कि उसकी जिंदगी में अरुणिमा के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले एक साल से वो अरुणिमा के साथ अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो हर बार अरुणिमा को नीचा दिखाता और ये एहसास दिलाता कि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बोझ है। उनके रिश्ते के बारे में परिवार वालों को कुछ नहीं पता था। हाँ, नेहा जी को सब कुछ मालूम था। आखिरकार इन सब की करता धरता वही थी। आस्तिक ये सब इसीलिए करता था कि जब अरुणिमा को छोड़ने की बारी आए तो अरुणिमा कोई ड्रामा ना करे। आस्तिक ने अरुणिमा को अपने दूसरे बंगले में अकेला छोड़ दिया था और खुद अमायरा के साथ अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रहता था। जब अमायरा का पति काम के सिलसिले में बाहर होता तो वो आस्तिक के पास आ जाती। दोनों वहां ऐसे रहते जैसे शादीशुदा हों। आस्तिक और अमायरा के इस विवाहेतर संबंध से आस्तिक को कोई दुख नहीं था, बल्कि वो पूरे हक के साथ अमायरा के साथ रहता था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। आज आस्तिक और अरुणिमा की शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन आस्तिक अमायरा के साथ अपने बेडरूम में था। उसने अमायरा को अपनी बाहों में भर रखा था। वे दोनों बिना कपड़ों के एक चादर के नीचे सो रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। तभी आस्तिक का फोन बजा। आस्तिक ने अमायरा को एक हाथ से थामते हुए अपने फोन की स्क्रीन देखी तो ये पुष्कर रायचंद की कॉल थी। उसने गुस्से में दांत पीस लिए और अमायरा को अपनी बाहों में कसते हुए फोन कान से लगाकर कहा, जी डैड, आज तुम्हारी और अरुणिमा की शादी की पहली सालगिरह है और घर में एक पार्टी है, तुम कहाँ हो?
पुष्कर के सवाल ने आस्तिक का सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। उसने गुस्से में कहा, डैड, इतनी सुबह मैं कहाँ हूँगा? जाहिर सी बात है, अपने कमरे में हूँ। प्लीज आप ये मत पूछना कि मैं किसके साथ हूँ। जाहिर है मैं उसके साथ हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। सामने से पुष्कर जी ने कहा, मैं ऐसा कुछ पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज शाम की पार्टी में समय पर पहुँच जाना, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण लोग आने वाले हैं और मुझे उनके सामने एक ज़रूरी बात करनी है। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अमायरा के कंधे को छूते हुए कहा, डोंट वरी डैड, मैं आज रात समय पर पार्टी में पहुँच जाऊँगा, आखिर मुझे भी तो इस पल का काफ़ी समय से इंतज़ार था। इसके बाद आस्तिक ने फ़ोन काट दिया और अमायरा को देखने लगा, जो उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए गहरी नींद में थी। उसे देखकर आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अमायरा के माथे पर एक चुम्मा लिया और उसे बिस्तर पर ठीक से सुला दिया। आस्तिक उठकर बैठ गया और इन सब बातों के बारे में सोचने लगा। तभी उसने अपनी पीठ पर अमायरा का हाथ महसूस किया। वो पलटकर देखता है तो अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने पूछा, क्या बात है बेबी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फ़ोन था? अमायरा की मुस्कान देखकर आस्तिक की सारी टेंशन खत्म हो गई। उसने धीरे से अमायरा के कमर पर हाथ डाला और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वे दोनों अभी भी बिना कपड़ों के थे और उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वे इस तरह एक दूसरे के साथ थे। आस्तिक ने अमायरा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, डैड का फ़ोन था, आज मेरी और उस साधारण लड़की के साथ शादी की पहली सालगिरह है और उन्होंने पार्टी रखी है, बस इसी वजह से फ़ोन कर रहे थे ताकि मैं पार्टी में जा सकूँ। अमायरा के चेहरे की मुस्कान ये सुनकर हल्की फीकी पड़ गई। वो बस आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने उसकी फीकी मुस्कान देखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर हाथ रखते हुए उसके होठों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो, एक बार डैड रिटायर हो जाए और उनकी जगह मुझे मिल जाए, उसके बाद हर फैसला मेरा होगा। तुम्हें पता है ना, मेरे डैड कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, जो उन्हें चाहिए वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। उन्होंने हमें अलग कर दिया और मेरी शादी उस लड़की से करवा दी जिसे मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना स्वीटहार्ट? अमायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसने सहमति में सिर हिलाया और आस्तिक के होठों पर अपने होठ रख दिए। अमायरा के ऐसा करते ही आस्तिक के अरमान फिर से जाग उठे। उसने धीरे से अमायरा के दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटा और उसे गोद में उठाकर इसी तरह किस करता हुआ बाथरूम की तरफ ले गया। अमायरा की शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से हुई थी और वो अपने पति के साथ अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आस्तिक उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था, चाहे वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हो या बिस्तर पर। आस्तिक हमेशा अमायरा के लिए हाजिर रहता था। इसी वजह से अमायरा और आस्तिक ने ये प्लान कर लिया था कि जिस दिन आस्तिक और अरुणिमा अलग हो जाएंगे, अमायरा को अपने पति को भी छोड़ना होगा। अमायरा ने तय किया था कि वो अपने पति का एक धोखे से एक्सीडेंट करवाएगी जिससे ये सब एक हादसा लगे। इसके बाद कुछ दिनों में वो आस्तिक से शादी कर लेगी। उसके पति की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अमायरा की होगी और आस्तिक तो पहले से ही उसका है। आस्तिक ने भी अमायरा के साथ अपने रिश्ते को अपने परिवार से छुपा कर रखा था, खासकर पुष्कर रायचंद से। वो नहीं चाहता था कि पुष्कर को अमायरा के बारे में पता चले और वो एक बार फिर से आस्तिक और अमायरा को अलग कर दे। इसलिए आस्तिक ने अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चली थी। बाथरूम में एक रोमांटिक शावर लेने के बाद आस्तिक तौलिए में ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा था और अमायरा अलमारी में अपने कपड़े बदलने के लिए गई हुई थी। आस्तिक फोन उठाकर जूली को कॉल करता है। वो उसे ये बताता है कि आज रात वो अरुणिमा के साथ पार्टी में जाएगा, इसीलिए अरुणिमा को पहले से तैयार होने के लिए कह दे। साथ ही वो अरुणिमा के लिए कपड़े और गहने भेज रहा था ताकि वो रायचंद खानदान की बहू जैसी लगे और आस्तिक के साथ खड़े होने लायक दिखे। फोन रखने के बाद आस्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक पल के लिए भी अरुणिमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी अमायरा उसके पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, क्या हुआ, फिर से तुम्हारा मूड खराब हो गया? अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो सुबह तुम्हारे साथ कुछ नौटी नौटी हरकतें करती हूँ ताकि तुम अपनी पत्नी के पास जाकर मुझे भूल ना सको। अमायरा की बात सुनकर आस्तिक उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सामने खींचता है और अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती और वो बदसूरत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। अमायरा एक कामुक मुस्कान के साथ आस्तिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारा मूड सही कर देती हूँ इससे पहले कि तुम अपनी उबाऊ पत्नी के पास वापस जाओ। दो घंटे बाद आस्तिक और अमायरा ने एक बार फिर खुद को बिस्तर पर संतुष्ट किया। इसके बाद अमायरा तैयार होने लगी। आस्तिक जब अलमारी से सूट पहनकर बाहर आया तो उसने अमायरा को तैयार होते देखा। वो हैरानी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा अपनी ड्रेस की जिप लगाते हुए कहती है, मेरा पति वापस आ गया है, उसने मुझे अभी अभी मैसेज किया है, मुझे घर जाना होगा।